نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نماز نفی میں سے اگلے چیپٹر کے عمل کی باتوں کو نوٹ کریں گے، وہی انداز ہوگا کہ آپ لوگ لکھیں گے، اور جو مسائل اس میں ہمارے سامنے احادیث کی روشنی میں آتے ہیں میں ان کو صرف پوائنٹس کی شکل میں آپ کے ساتھ دہراؤں گی، اور جو بات کہوں گی اس کی دلیل کسی کو دیکھنی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. طہارت کا بیان، آج ہم انشاءاللہ یہ دوسرا چیپٹر ہے اس کتاب کا، اس کی روشنی میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں نوٹ کریں گے. پہلی بات جس چیپٹر سے ہمیں معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور وضو کے لیے پانی پاک ہونا شرط ہے. دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ بعض دفعہ پانی کا کوئی ایسا ذخیرہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ شک ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز گر سکتی ہے، مثلا کنویں یا کوئی نہریں، تو اس کے بارے میں وہم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی پاک ہوتا ہے. اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ سمندر کا جانور حلال ہے، چاہے وہ خود بخود بھی مر جائیں. اگلی بات جو پتہ چلی کہ کھڑے پانی میں، یعنی پانی ایک تو رننگ ہوتا ہے، فلوئنگ، جو بہتا ہے نہروں یا دریاؤں کی یا سمندر کی صورت میں، لیکن کھڑا پانی مثلا سوئمنگ پول، ایک خاص جگہ ہے جہاں کچھ پانی جمع ہے، تو اس کھڑے ہوئے پانی میں ناپاکی کا غسل نہیں کرنا چاہیے اس پانی سے، اور ایسے پانی میں پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ایسے پانی کو وضو کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ باتیں کہتے ہوئے میرے ذہن میں واقعی سوئمنگ پول کا منظر آ رہا ہے. بعض لوگ پبلک سوئمنگ پولس میں جاتے ہیں، لیکن کراہت کے ساتھ کہوں گی کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں اندر سوئمنگ کرنے والے کے جسموں سے کوئی گندگی یا رطوبت اس پانی میں اگر شامل ہو چکی ہو تو اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. انسان سوئمنگ کر سکتا ہے، لیکن پانی جو استعمال ہوگا اگر وہ گندا ہوگا تو پھر اس سے نہ آپ وضو کر سکتے ہیں اور نہ غسل کر سکتے ہیں. اگلی بات جو ہم نے اس چیپٹر سے سیکھی وہ کیا ہے کہ باتھ روم میں جاتے ہوئے، یعنی رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کہتے تھے، میں بولوں گی آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من الخبوث والخبائث. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نر اور مادہ ناپاک جنوں کے شر سے. ہم اس سے پتہ چلا کہ ایسی جگہیں جن کو ہم ریسٹ رومز یا ٹوائلٹس کہتے ہیں، یہ گندگی کی جگہ ہوتی ہیں، تو وہاں جانے سے پہلے ایسی دعائیں مانگ لینا انسان کو شیطان سے بچا لیتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک اور جو دعا بتائی وہ اسی سے ملتی جلتی ہے کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اب یہ پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ گندی چیزیں جو ایسی جگہوں پہ رہتی ہیں، قضاء حاجت کے وقت انسان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوتا عموماً، اور شیاطین کو بندے کی وہ کیفیت بہت اچھی لگتی ہے جب وہ برہنہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو لباس کا صحیح اہتمام نہیں کرتے وہ شیطان کے اثر میں رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان اگر ایسی دعاؤں کا اہتمام کر لے تو اللہ کی توفیق سے کئی قسم کے فتنوں سے انسان بچ سکتا ہے. اگلی چیز ریسٹ روم سے باہر نکلنے کی دعا اس حصے میں ہم نے سیکھی، غفرانکا غفرانکا. اللہ کے نبی جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے باہر آتے تو یہ دعا سکھائی. کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں. کس بات کی بخشش؟ ہمارے ہاں تو عموماً یہ تصور ہے کہ استغفار یا گناہوں کی معافی تب مانگو جب کوئی گناہ کر چکے ہو، तो कज़ाए हाजत में जाना कोई गुनाह है जिस पे आप कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे? तो इसकी लॉजिक क्या है? पहली बात क्या है कि इंसान इस बात का इजहार करता है कि अल्लाह, ये जो इतना वक्त मैंने कज़ाए हाजत में यानी रेस्ट रूम में गुजारा, ये मैं तेरी याद तेरे जिक्र से गाफिल रहा। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि बाथरूम में बात ना करो, जब कोई बरहंगी की हालत में हो तो ज़्यादा बात ना करे, क्योंकि किरामन कातिबीन को इससे तकलीफ़ होती है, लिखना मुश्किल लगता है उनको। तो जब अल्लाह का जिक्र हम नहीं कर सकते तो उन घड़ियों पे इंसान अफसोस करता है कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी का ये वक्त तेरी याद से गाफिल गुजर गया। यहाँ बात करूँगी उन लोगों के बारे में जो अनयूजुअल टाइम लगाते हैं बाथरूम में, टॉयलेट में चले जाएं तो सारे घर को मुश्किल होती है कि अब ये निकलेंगे नहीं। सिर्फ़ एक ही जुमला बोल देती हूँ कि जो जितना वक्त जहाँ गुजारेगा, ज़्यादा उम्मीद है कि वहीं मौत आए। नॉर्मल है ना, मौत का तो कोई वक्त पता नहीं, कौन चाहेगा कि उसकी लाश टॉयलेट से निकले? फिर वहाँ जाके गाने गाना, मैगज़ीन पढ़ना, क्या इसकी कोई गुंजाइश बनती है? इस्लामी कल्चर नहीं, ये एक ज़रूरत है, फारिग हुए बाहर आ गए। ये कल्चर जो है कि आप बाथरूम सॉन्ग्स के नाम पे एक चीज़ को ग्लैमराइज कर दें और फिर अंदर जाके आवाज़ें लग रही हैं, ये मायूब बात है। अपने ज़िंदगी में इस चीज़ पे भी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि कज़ाए हाजत बाथरूम में जाने के बाद कोई भी बिला वजह बात ना करे, जो चीज़ चाहिए पहले लेके जाए। बच्चों को बचपन से माँ सिखाए और छोटे बच्चे को माँ तरबियत करे। मैं देखती हूँ कि तरबियत का नुक्ता आगाज़ ही गलत होता है। माएँ बच्चों को बिठाती हैं जब फारिग करवाने के लिए, छोटे छोटे पॉट्स बने होते हैं, साथ ही बातें शुरू कर देती हैं। उनका ख्याल क्या होता है कि हम बातें करेंगे तो इनका ध्यान बढ़ जाएगा और ये फिर यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। मैं इस बात को ऐसे समझती हूँ कि माँ ने बचपन से उसको आदत डाल दी कि तुम टॉयलेट में जाके भी बातें करो, इशारे से बात नहीं करते, क्योंकि उसके लिए तो वही कैफियत होती है। तो लिहाजा क्या बात पता चली कि बिला वजह बाथरूम में बैठना नहीं, वहाँ जाके बिला वजह बात नहीं करनी, और जब वहाँ से बाहर आए तो इस शऊर के साथ कि हमने इतना वक्त अल्लाह की याद से गाफिल होके गुजार दिया, कहेंगे गुफराना का। अगली बात इस चैप्टर से हमें पता चली कि कोशिश करनी चाहिए कि टॉयलेट में किबला रुख ना बैठा जाए। कभी मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन जब टॉयलेट्स बनते हैं तो फिर उसके अंदर यानी इहतमाम होना चाहिए। बस दफ़ा हम किसी ऐसे टॉयलेट में जाते हैं कि जहाँ पहले से वो बने हुए हैं किबला रुख, तो फिर क्या किया जाए, फिर पुश्त करके बैठा जाए, यानी फ्रंट की बजाय बैक साइड जो है वो किबले की तरफ हो जाए लेकिन दूसरी तरफ ना हो। अगली बात हमें पता चलती है कि किसी मजबूरी के वक्त भी इंसान को गोबर या हड्डी के साथ इस्तंजा नहीं करना चाहिए। अरब लोग करते थे, तो आपने फरमाया कि ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। जिन जो है ना, वो ऐसी चीज़ें खाते हैं, अब अगर उसके साथ इंसान गंदगी लगा के फेंक देता है तो उनको तकलीफ़ होगी। और एक और बात पता चली कि रास्तों में और सायादार दरख्तों के नीचे रफ़ा हाजत से फारिग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जगह लोगों के आराम की होती हैं और वहाँ लोग अगर गंदगी देखेंगे तो ये उनके लिए तकलीफ़ की बात होगी। अगली चीज़ हमें इस चैप्टर से पता चली कि सीधे हाथ यानी राइट हैंड से इस्तंजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हाथ खाने के लिए बनाया। फिर अगली बात पता चली कि किसी मजबूरी में अगर पानी ना हो तो मिट्टी या पत्थर के ढेलों से इस्तंजा हो सकता है, लेकिन ताक ऑड नंबर्स यानी 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स में इस्तेमाल किया जाएगा, और तीन ढेलों से भी अल्लाह के नबी करते थे। आज के दौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी मौजूद होता है, इसलिए इसके लिए कोई फ़िक्र की बात नहीं। हाँ, यहाँ एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं कि बाज़ दफ़ा जब हम पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं और वहाँ पानी का अहतमाम नहीं होता तो क्या किया जाए? स्पेशली स्कूलों में बच्चों को इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, या वो लोग जो जॉब्स करते हैं या एयरपोर्ट्स पे आप जाते हैं, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, ऑल्टरनेट्स लिए जा सकते हैं। मसलन आप अपने पर्स के अंदर पाउचेस रख सकते हैं, जिस तरह सील पैक सैंडविच बैग्स होते हैं, पतले से होते हैं, दिखते भी नहीं हैं, और जिसको जिपर लॉक कहते हैं हमारे यहाँ, आप उसको अपने पर्स में एक दो रख छोड़ा करें। जब कहीं ऐसी जगह हो बाहर सिंक से, उसमें आप पानी भरें, वो एक थैली सी बन जाएगी, अंदर जाए उसका साइड से थोड़ा सा खोल के तो उसको इस्तेमाल करके फेंकते, सबसे आसान है। ये ना हो तो दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने पास कुछ छोटा सादा ग्लास रख सकते हैं, आजकल डिस्पोजेबल ग्लास आम है। तीसरी सूरत, अगर कुछ भी नहीं है तो आप टॉयलेट पेपर को गीला करके ले जा सकते हैं बाहर से। उससे भी आखिरी दर्जे की, जो बिल्कुल ही कराहत के साथ ही करने वाली बात है, लेकिन उसमें रुख्सत आसानी मिलती है कि जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो बिल्कुल साफ़ होता है। आप देखते हैं कि यहाँ सफाई का एहतमाम बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बैठने से पहले ही फ्लश करें और टॉयलेट रोल को थोड़ा सा गीला कर लें, फिर जितना इस्तेमाल कर सकें करें, और आखिरी दफ़ा जो है वो आप उस गीले से कर लें। लेकिन यह कि पूरा एहतमाम होना चाहिए पानी का, क्योंकि उससे बदबू भी जाती है और इंसान के जिस्म के जो जर्म्स हैं वो भी चले जाते हैं। फिर अगली बात इससे पता चलती है, इस चैप्टर से हमें, कि कज़ाए हाजत के दौरान दूसरों से छुपना चाहिए, सामने नहीं बैठना चाहिए कि कोई दूसरा देखे, क्योंकि ये बात हया के भी मुनाफी है और मुरव्वत के भी ख़िलाफ़ है। हया के ख़िलाफ़ कैसे है कि इंसान का सतर खुल जाता है, प्राइवेट पार्ट्स खुल जाते हैं, और ये चीज़ कभी भी इंसान को पसंद नहीं आती। मुरव्वत के ख़िलाफ़ कैसे है कि इंसान को अल्लाह ताला ने आला पैदा किया, लक़द खलक़ना लिंसान फ़ी अहसनी तकवीम। एक इंसान जब दूसरे इंसान को इस तरह के प्राइवेट मैटर्स करता देखे, जो हर इंसान की ज़रूरत है, कोई नेक है या अमीर है या गरीब, हर एक ये काम करता है, लेकिन दूसरे के सामने करता हुआ देख के उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं रहती, तो इस्लाम रिश्तों की और इंसानों की रिस्पेक्ट करवाना चाहता है। यहाँ अफसोस के साथ कहूँगी, जो चीज़ मेरे इल्म में भी आई और मुशाहदा भी हुआ, कि बाज़ दफ़ा जो नॉन मुस्लिम स्कूल्स होते हैं वहाँ पे टॉयलेट्स जो होते हैं उसमें मुझे बताया गया कि दीवारें नहीं होती, यानी छोटे बच्चे भी अगर वहाँ जाते हैं तो 5-6 टॉयलेट लगे होते हैं और वो एक दूसरे के सामने बैठ के करते हैं। और मैंने ऐसा एक स्कूल देखा भी कि एक ही रूम में 4-5 टॉयलेट लगे हैं, तो समझ नहीं आई कि ये यूज़ कैसे करेंगे, तो पता चला कि यहाँ टॉयलेट का रिवाज नहीं। इसी तरह जो बात मुझे किसी एक ने पर्सनल अपने मुशाहदे से बताई, कि जेलों के अंदर जब प्रिजनर्स को रखते हैं तो वहाँ टॉयलेट कॉमन होते हैं, इवन गुसल करने के लिए भी जो जगह है वह एक ही वक्त में कई कैदी कर रहे होते हैं, इस्लाम इसको भी इजाज़त नहीं देता। कुछ नहीं है तो चादर तान ले, लेकिन एक को दूसरे के सामने ऐसा गुसल नहीं करना। या फिर एक छोटी सी बात करूंगी, कि बाज़ दफ़ा स्विमिंग के नाम पे हम ये सोच के स्विमिंग करते और कराते भी हैं कि जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा स्विमिंग के नाम पे फिर जो कॉस्ट्यूम्स और जो लिबास पहन के बच्चियां, अगर इवन सिर्फ बच्चियां ही हों, तो वो भी चीज़ हया के ख़िलाफ़ है। हर वो चीज़ जो इंसान के सतर को खोल दे या उसके फिगर को दिखाने लगे, तो ये चीज़ इंसान के लिए पसंदीदा नहीं है। अगली चीज़ हमने इस चैप्टर से जो सीखी वो क्या है, कि जब कोई रेस्ट रूम में हो तो बाहर से किसी को उसको सलाम नहीं करना चाहिए, और अगर कोई कर दे तो जवाब नहीं देना चाहिए। अब देखिए, सलाम का जवाब नहीं दे सकते तो फिर वहाँ गाने कहाँ गा सकते हैं, और बात करने की तो क्या ज़रूरत होगी। अगली बात पता चली, कि बिला ज़रूरत जो शावर की जगह होती है ना, जहाँ इंसान अपने आप को पाक करता है, यानी एक टॉयलेट होता है एक शावर, तो बिला ज़रूरत शावर के अंदर इंसान को फारिग नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंदगी है, छींटे हैं, कहीं ना कहीं पड़ सकती हैं, लेकिन मजबूरी और बात है कि इंसान को अपने ऊपर काबू ना रहे, लेकिन टॉयलेट के लिए इंसान को अलग जगह इस्तेमाल करनी चाहिए। या फिर वही तरीका, जो टब सिस्टम है जिसके अंदर बाज़ लोग घंटों गुजार देते हैं, तो आप देखिए कि इंसान दीने मुतहर है, पाक दीन है, कोई ऐसा तरीक़ाकार जो मॉडर्न होने की तो अलामत हो सकती है, आप पूरे पूरे कमरे जितने रेस्ट रूम्स बना के उसके अंदर बड़े बड़े स्विमिंग पूल छोटे छोटे घर में बना लें, शौक़ की बात और है, लेकिन पाकी पलीदी का ख्याल तो बहरहाल रखा जाएगा। गंदगी निकल के इंसान के सारे जिस्म को लग जाए तो वो चीज़ इंसान की जो शान है उसको घटा देती है। अगली चीज़ हमें इससे पता चली, कि जब कोई शख्स बैतुल खला में जाए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर रेस्ट रूम में गए, तो बाद में आपके पास पानी लाया गया और आपने उससे वज़ू किया, यानी किसी बड़े इंसान की खिदमत के लिए वज़ू करवाया जा सकता है, ये चीज़ इस बाब से हमें पता चलती है। फिर अगली चीज़ हमें पता चली, कि जिसको रेस्ट रूम में जाने की हाजत हो, यानी कोई ऐसा दबाव है कि उसको पेशाब आया हुआ है या उसको यूज़ करना है और नमाज का भी वक्त आ जाए, तो पहले वो फारिग हो जाए फिर नमाज़ पढ़े, वरना नमाज में फोकस नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ फिर वही कहूँगी, कि इतना लंबा ना जाए कि नमाज जमात से कज़ा हो जाए और उसको अलग से पढ़नी पड़े। अगली बात पता चली इसमें हमें कि जब बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हो तो खाना खा लेना बेहतर है नमाज पढ़ने से, वरना नमाज के अंदर खाने की तरफ तवज्जो जाएगी। बाज़ दफ़ा लोग इस हदीस को भी बड़ा मिस कोट करते हैं कि जब खाने का वक्त आए तो नमाज नहीं, जी खाना लगा हुआ है वो खा ले। ठीक है, ईशा और अशा का फ़र्क अल्लाह के नबी ने रखा, लेकिन ये हमारा मामूल ना हो। सबको पता है किस वक्त नमाज होती है, तो खाना या उससे पहले लगा लें या उससे बाद में लगा लें। तो कभी कभी की एक्सेप्शनल कंडीशन तो हो सकती है, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। अगली बात जो इस चैप्टर से हमने सीखी वो क्या है कि पेशाब की छींटों से बचना चाहिए, ये कब्र के अजाब का सबब बनता है। बाज़ लोग, एक और यहाँ फिर छोटी सी बात तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि बाज़ रेस्टरूम्स इस तर्ज के बने होते हैं कि पेशाब की छींटों से बचने का कोई इहतमाम नहीं होता। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो बहुत ही दर्दमंदी के साथ कहूँगी कि कभी भी आप अगर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें, और स्पेशली जहाज़ों में या एयरपोर्ट्स पे या ट्रेन्स पे, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस करती रहती हूँ तो मैं उसी की बुनियाद पे आपको भी फ़ायदा देना चाहूँ, जब कभी टॉयलेट पे जाएं तो एक लम्हे के लिए ज़रा गहरी नज़र से देख लें कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसके छींटे उसकी सीट की साइडों पे पड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा नीचे फ्लोर पे होते हैं, बाज़ दफ़ा टॉयलेट के जो बिल्कुल आगे थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पड़े होते हैं। तो उसको पाक कर लें, वरना आपके जिस्म को गंदगी लगने का डर है। और मुझे तो उसके लिए सबसे अच्छा वो भी लगता है कि जो टॉयलेट शीट्स रखी होती है उन्होंने, जो उसके शीट के ऊपर बिछाने की, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अल्लाह के नबी ने दो लोगों को कब्र के अजाब में मुब्तला देखा था, तो पता चला कि एक शख्स वो था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा जो शख्स था वो गीबत करता था। तो दूसरी अगली बात नोट कीजिएगा कि चुगलखोरी करना कब्र के अजाब का सबब बनेगा। कितना मज़ा आता है ना चुगलियाँ खाते हुए, बैक बाइटिंग, उसकी बात उधर। कभी भी ऐसा कोई कैफियत आए, ऐसी कैफियत आए, तो फौरन सोच लीजिएगा कि कहीं ये मेरे कब्र के अजाब का जरिया ना बन जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसके कई और तरीके होते हैं। यदि जब इंसान फारिग हो जाए, फिर अच्छी तरह से अपने आप को पाक और साफ करे, फिर अपनी जगह से उठे। एक और यहाँ बड़ी ही, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती बात करनी, लेकिन कुछ चीज़ों की तवज्जो दिलानी पड़ती है। एक बहुत ही अजीब व गरीब सा जो रिवाज देखा गया, और नए बनने वाले बाथरूमों में अमूमन अब ये चीज़ आने लगी कि फारिग होने के लिए एक टॉयलेट होता है और पाक होने के लिए उसके साथ अलग बना होता है, जहाँ से आप पानी यूज़ करें। आप उस कैफियत को देखिए कि जब एक जगह से उठ के इंसान दूसरी जगह मूव होता है, तो उस दौरान कितनी यानी गंदगी फैलने का डर है। तो अल्लाह ताला हमें इन नेमतों का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली चीज़ इस चैप्टर से हमने सीखी कि अगर कोई किसी ऐसी जगह पे गंदगी फैला रहा हो कि अभी वो उसी कैफियत में है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। बस अगर एक शख्स है, उसने मस्जिद में आके पेशाब करना शुरू कर दिया, तो क्या आप उसके पीछे भागेंगे? नहीं। एक मौके पे अराबी ने ऐसा काम शुरू किया तो सहाबा कराम उसको मारने के लिए दौड़े कि इसको तमीज़ नहीं है कि ना मस्जिद में आके ये काम कर रहा है। लेकिन बद्दू था, गंवार था, और जो लोग दुनियावी तौर पे नहीं पढ़े लिखे होते, वो बाज़ दफ़ा दीनी पाकी पलीदी का भी ख्याल नहीं रखते। तो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि नहीं, उसको फारिग होने दो। और जब वो फारिग हुआ, तो आपने फिर उसके पेशाब के ऊपर खुद अपने हाथों से पानी का डोल डाला। अब उस दौर की मस्जिदों और आज की मस्जिदों में बहुत फ़र्क है। उस दौर में कच्ची मिट्टी की थी, और पानी डालने से या ऊपर और मिट्टी ला के डालने से पाक हो जाती हैं। आज के दौर में डिफरेंट है। खुदा ना खास्ता अब ऐसा काम कोई बच्चा करे आज, आम इंसान तो वो ऑफ कोर्स नहीं करेगा, तो फिर बेहतर है कि देख के खामोशी इख्तियार की जाए। जब वो फारिग हो जाए, तो सिर्फ आपको उतना हिस्सा धोना पड़ेगा या साफ़ कराना पड़ेगा। और अगर आप सोचिए ऐसे हाल में किसी को डांटें या मारें, तो भाग के पूरी मस्जिद गंदी होगी ना। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने ये हिकमत सिखा दी कि लोगों को मौका दो। अगली चीज़ इस बाब से जब हम सीखी वो क्या थी कि वो कपड़ा जिस पे पीरियड्स का ब्लड लग जाए, उसको पानी हो तो धो के, और पानी अगर नहीं है तो खुरच के साफ किया जा सकता है। अभी आगे और इसके मसाइल आएंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ऐसे मसलों पे भी बहुत ज़्यादा यानी अफरात और तफरीत है, और इवन बाज़ दफ़ा पीरियड्स में पहने हुए कपड़े जो हैं वो आम दिनों में फिर पहन ही नहीं लोग सकते, क्योंकि इस पे नमाज़ नहीं पढ़नी मैंने उन दिनों पहने थे। तो ऐसा मसला नहीं है, जब कभी ऐसा कोई मामला हो अगर वहाँ दाग लग चुका है पानी से धोया जा सकता है, साफ़ होगा, हत्ता कि अगर पानी के साथ धोने के बावजूद भी उसके गीलापन रहे कोई हर्ज नहीं, और इवन उस पर स्टेन भी रहे लेकिन उसकी गंदगी निकल गई है तो भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें, यानी क्योंकि उस दौर में सहाबियत के उस तो इतने कपड़े नहीं थे जितने आज हमारे पास हैं। तो आज के लिए हुक्म क्या है कि पहले ही पूरा इहतमाम किया जाए, कैसी ऐसा मौका ना आए, लेकिन अगर कभी आ जाए तो फिर उसको धो के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। और बाकी रह गई बात कि उसमें पसीनों का आना, ऐसी बातें कोई हमें ऐसी कोई दलील नहीं मिलती। यानी बाज़ लोग कहते हैं कि पीरियड्स के दिनों के पहने हुए कपड़ों में अगर पसीना आ गया तो बाद में आप उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, ऐसी कोई बात नहीं। फिर एक और हदीस में देखी गई कि बाज़ दफ़ा लोग किसी का ऐसा दुपट्टा लेके भी नमाज नहीं पढ़ने देते जो किसी ने पीरियड्स में पहनना होता है, कोई दूसरा लेने भी लगे तो उसको रोक देते हैं, बाज़ दफ़ा उसको जाए नमाज को हाथ नहीं लगाने देते, ऐसी कोई बात नहीं। एक मौके पे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपने कहा कि जाए नमाज पकड़ाओ, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मैं पीरियड से हूँ, तो आपने कहा हैज़ तुम्हारे हाथों में तो नहीं है, तो लिहाजा हाथ जो है वो मोमिन के पाक होते हैं। फिर अगली बात पता चलती है कि इंसान की कुछ ऐसी सिक्रीशंस होती हैं जो कुछ पर्सनल कामों से रिलेटेड हैं, मर्दों में भी और औरतों में भी। तो अगर किसी मर्द के कपड़े पे कोई ऐसी चीज़ जैसी रतूबत लग जाए तो उसकी बीवी भी उसको धो सकती है और वो ख़ुद भी उसको धो के फिर उसी कपड़े में नमाज भी पढ़ सकता है। फिर अगली बात इससे हमें पता चली कि दूध पीते हुए बच्चे का पेशाब, लड़का है अगर वो, तो अगर कोई पेशाब कर दे तो छींटा लेके पानी थोड़ा सा लेके उसके ऊपर छींटे लगा दीजिए तो जायज़ है, उसको फिर धोए अगर ज़रूरत मतलब मुश्किल है हालात नहीं ऐसे कि उसको धोया जाए तो उसी तरह गुजारा हो सकता है। लेकिन अगर लड़की फीमेल बच्ची है बेबी है तो उसका पेशाब जो है उस कपड़े को धोना पड़ेगा, ये हमें इस हदीस से पता चलता है। लेकिन इसकी वजह क्या है, आज साइंस ने भी बता दिया कि लड़के का पेशाब जो है वो पतला होता है, थिन होता है, जबकि लड़कियों का पेशाब गाढ़ा होता है। और इसकी एक बहुत बड़ी दलील आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि लड़कियों को पीरियड्स आते हैं लड़कों को पीरियड्स नहीं आते, उसकी वजह यही है कि औरतों के जिस्मों के अंदर जो गंदगी और रतूबतें होती हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फिर हर माह उसको जिस्म से निकलने की ज़रूरत होती है, और मर्दों में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। ये अल्लाह का बना हुआ निज़ाम है। अब इस पर आप कहें कि औरतों को हकूक ही नहीं मिले, लो जी उसका पेशाब धो रहे हैं, ये तो औरतों की बड़ी तजलील हो गई, तो सोचते रहें। हाँ, हुक्म यही है, दोबारा दोहरा देती हूँ, दूध पीता हुआ बच्चा 2 साल के अंदर अंदर जो अभी खाना नहीं खाता, ये भी नोट कीजिएगा, ये बेबी होता है 4-5 माह के बेबी तक की ये बात है, क्योंकि जब वो दूध के साथ कुछ और भी खाने लग जाए तो ऑफकोर्स फिर तो बदबू भी आएगी गंदगी भी आएगी, लेकिन बिल्कुल जो छोटा सा बच्चा है जो सिर्फ माँ के दूध पे पल रहा है अगर वो पेशाब कहीं कर देता है तो छींटे से ऊपर उस पर सिर्फ जैसे हाथ से छींटा लगा दिया जाए तो भी गुजारा हो जाता है, कोई धो ले तो आसन है, अब ये नहीं कि ये फ़र्ज़ समझ लें, और कोई धोए तो आपके आप तो गुनाह का काम कर रही है, मैंने तो बुक में पढ़ लिया था, ऐसी बात नहीं है। और अगर लड़की है तो फिर उसको धोया ही जाएगा। अगली बात क्या पता चलती है कि ज़रूरत के तहत नमाज जूते पहन के पढ़ी जा सकती है, मसलन अब ये नहीं कि आप किसी बेहतरीन मस्जिद में जाएं और जूते पहन के हॉल में पहुंच जाएं, जी मैंने हदीस पढ़ी है, नहीं, आप बाहर गए हैं, लड़के खेलने जाते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, घर आते हैं, माँ पूछती है भाई नमाज़ पढ़ी थी, नहीं वो मैं कैसे पढ़ता, मैंने तो जॉगर्स पहने हुए थे, तो उतार देते, नहीं उतारता तो कोई चोरी कर लेता, नहीं उसी जॉगर्स के साथ पढ़ लें, वहीं घास में पढ़ लें। हाँ, ये देख लेना चाहिए कि जूते के साथ कोई नजासत ना लगी हो, सफ़र के दौरान मसलन कोई कुत्ता है गुजरा रास्ते में से उसकी कोई गंदगी लग गई या कोई और ऐसी, अदरवाइज जूते जो हैं वो पाक होते हैं। अगली बात पता चली कि अगर कुत्ता किसी चीज़ के अंदर मुंह डाल दे, बर्तन है उसमें से पानी पी ले या खाने की चीज़ खाने का कोई बर्तन था, तो उसको पाक करने का तरीका क्या है कि उस बर्तन को 7 दफ़ा धोया जाएगा। पहली बार मट्टी से धोएंगे, मट्टी लेके और उसको मांझा जाएगा, क्योंकि मट्टी में जर्म्स को किल करने की एक खूबी होती है, उस दौर में वैसे भी साबुन और डिटर्जेंट्स वगैरह नहीं थे, तो मट्टी के साथ धोया जाएगा। आज भी इसी रिचुअल पे अमल किया जाएगा, किसी का बर्तन बाहर रहा, नेबर्स में से कोई कुत्ता आया और वो मुंह मार गया, तो आप मट्टी के साथ एक दफ़ा उसको धो लें और फिर 7 बार पानी से धोएंगे। फिर अगली चीज़ हमें इससे पता चलती है इस इसी चैप्टर से, वो क्या है कि मुर्दार जानवर की खाल, यानी मुर्दार मीन जो बग़ैर स्लॉटर किए कोई जानवर मर जाते हैं, या इस गैर इस्लामी तरीके से जो जानवर ज़िबह किए जाते हैं, तो उनकी जो खाल है उसको अगर बाद में केमिकल्स के ज़रिए से साफ़ कर लिया जाए तो उसकी खाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है। यानी बकरी है, गाय है, भैंस है, अब ये हलाल जानवर हैं, लेकिन ज़िबह ठीक तरीके से नहीं हुए, तो क्या किया जाएगा कि उसकी खाल जो है उसको, उस दौर में इसको दबागत कहते थे, दबागत चमड़े को रंगते थे, यानी असल जो खाल है पहले उसको सुखाते, वो उसके सारी जर्म्स उसके अंदर से सब चीज़ें ख़त्म हो जाती, और फिर उसके बाद उसको ऊपर कुछ पेंट कर देते थे, कलर चेंज हो गया, अब उसकी वो असल चीज़ तो ख़त्म हो गई, तो फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आम तौर पे नहीं। अब आप कहें कि क्या हम पिग या खिंजीर की खाल को करें, तो नहीं। अगला मसला इससे जो हमने देखा वो क्या है कि दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से अल्लाह के नबी ने मना किया। दरिंदे कौन होते हैं? जैसे ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जबड़ों से चीर फाड़ के खाते हैं, मसलन शेर, चीता। अब देखिए कि ये मतलब हराम जानवर है ना, तो इनकी खाल भी इस्तेमाल नहीं होती, और आज को दौर में आपको पता है कि सबसे महंगी चीज़ें प्योर लेदर की जो होती हैं वो इन्हीं जानवरों की होती हैं, और सांप की खाल के बने हुए जूते और पर्स अवॉइड करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ कोई केमिकलाइज करके उस पर पॉलिश कर दी गई है, कलर चेंज कर दिया गया और बात है, लेकिन आम हालात में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली बात यह है कि बिल्ली का जूठा पाक है। अगर आपके घर में बिल्ली है और वो उसने कहीं बाल्टी में पानी में मुंह डाल दिया है, अब आप उस पानी को इस्तेमाल करते थे पौधों को देने के लिए या इवन नहाने धोने के लिए भी, तो कोई हर्ज की बात नहीं कि बिल्ली नजस नहीं होती। अगली बात कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ऐसे ही है जैसे अपने पेट में दोजख की आग जमा करना। हमारे यहाँ इस चीज़ का कम ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसको दौलत और स्टेटस का एक ज़रिया समझा जाता है कि किसके बर्तन कितने चमक रहे हैं। बस अब गोल्ड नहीं होता, और गोल्ड ऑफ कोर्स कैसे होगा, गोल्ड प्लेटेड कर दिया जाता है, एक औंस उसमें गोल्ड का लग गया, जायज़ नहीं है। और इससे भी पीछे हट के देखें तो जिसको शायद किसी ने आम आंखों से गौर ही ना किया हो, और वो क्या है कि बाज़ चमचियों के हैंडल्स गोल्ड प्लेटेड होते हैं, बाज़ कप्स और ग्लास हैं उसके ऊपर बॉर्डर ऐसा होता है, मसलन ये देखिए ये मग है ना, अब इस पे गोल्ड नहीं है लेकिन गोल्डन है ना, ये अब आर्टिफिशियल है, हमें भी पता है, कोई हरज नहीं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो एहतियात के तकाजे में ऐसे बर्तनों में भी नहीं खाते। मैं खुद जानती हूँ ऐसे लोगों को, वो नहीं खाते। मैंने कहा क्यों नहीं खाते आप, क्या ये गोल्ड, आप क्या समझते हैं गोल्ड है? कहते नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप पीते पानी, जब कोई किसी के घर जाएं कोई रखे, आप घर वाला तो बड़े अहतमाम से सबसे खूबसूरत ग्लास निकाल के आपके लिए लाते हैं और आप पी नहीं रहे, क्या वजह? तो कहते हैं कि इससे ये साबित होता है, यानी मुझे ये लगता है, वो अपना कहते हैं ये कोई फतवा नहीं है, अपने दिल की बात है, मुझे इससे ये लगता है कि इस बंदे के दिल में सोने के बर्तनों में खाने की कराहत ख़त्म हो गई है, कि अगर इसको कभी मौका मिला तो ये ज़रूर सोने के भी इस्तेमाल करेगा, तो जो अल्लाह के हुक्म से कराहत ख़त्म कर दे तो मेरा दिल नहीं करता उसमें पीऊँ। तो बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा बात थी, लेकिन सोने के बर्तनों की जो प्लेटेड है उसमें तो अवॉइड करना चाहिए, और आज के दौर में ये प्लेटेड बर्तन और ऐसी चीज़ें जो ये बहुत मिलती, ऐसी चीज़ें तोहफ़ों में भी नहीं देनी चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर दूसरे के लिए भी ये चीज़ मुश्किल का सबब बनती है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो हमने सीखी वो जुनाबत के बारे में थी। जुनाबत उस कैफियत को कहते हैं जब किसी इंसान पे गुसल वाजिब हो। एक तो वो गुसल है ना, शावर लेना, जो हम अपनी सहूलत से लेते हैं, गर्मी लगी तो ले लिया, गंदगी गंदे गंद थोड़ा सा फील हुआ, पसीना आया हुआ तो लिया, वो अलग कैफियत है। लेकिन इस्लाम पाकीज़ा मज़हब है, इसमें कुछ ऐसी हालतें आती हैं इंसान के ऊपर कि जिस वक्त गुसल करना फ़र्ज़ के दर्जे पर आ जाता है, यानी अगर आप उस वक़्त गुसल नहीं करते तो फिर क्या होगा कि आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, और बाज़ दफ़ा तो बहुत बड़े बड़े शरई मसाइल उसके अंदर आ जाते हैं। तो उसके अंदर क्या चीज़ें, चार चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें गुसल जो है इंसान पे फ़र्ज़ हो जाता है। पहली चीज़ वो है कि जिस्म से सेक्सुअल डिस्चार्ज होना, चाहे वो ताल्लुक़ के बाद हो या ताल्लुक़ के बगैर, यानी ऐसे ही बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की तबीयत में ऐसी चीज़ होती है, कोई चीज़ ऐसी देख ली, कोई ऐसी चीज़ सोच ली, तो जिस्म से कुछ एक्सक्रीशन निकल जाती है, तो उस सूरत में, यानी जब एक मनी बोलते हैं उसको, कि वो चीज़ जो इंसान की ख्वाहिश के गलबे के बाद आती है, तो उस वक्त गुस्ल वाजिब हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि शौहर और बीवी के ताल्लुक़ के बाद गुस्ल वाजिब हो जाता है। तीसरी चीज़ हैज़ के बाद, यानी औरत लड़की पीरियड से फारिग हुई तो उसके लिए गुस्ल वाजिब है। और चौथी चीज़ है नफास। नफास कहते हैं वो डेज़ जो बच्चे की डिलीवरी के बाद के दिन होते हैं। अब इस मसले में क्या होगा, कितना है, इसकी थोड़ी सी बातें जो हमने इस चैप्टर से सीखी वो क्या थी, कि शौहर और बीवी के जो गुस्ल का ताल्लुक है, तो उसका ताल्लुक सिर्फ, यानी कब होता है, कि जब दोनों के जिस्म यानी प्राइवेट पार्ट्स मिल जाते हैं बग़ैर किसी आड़ के, और मिलने में भी थोड़ा सा, यानी उस चीज़ की वो जो कैफियत है जिसको आप ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ दखूल हो, कुछ ना कुछ ऐसा मामला होगा, फिर गुस्ल होता है। सिर्फ जिस्म के जिस्म से छूने से गुस्ल वाजिब नहीं होता। फिर अगली चीज़ जो पता चलती है कि अगर आपस में ताल्लुक़ कायम हो जाए लेकिन कोई चीज़ डिस्चार्ज ना हो, फिर भी गुस्ल हो वाजिब हो जाता है। फिर अगली चीज़ पता चलती है इस हिस्से से कि औरत को भी मर्द की तरह एहतलाम हो सकता है, यानी नींद की हालत में कोई ऐसी चीज़ देख लेना कि सुबह जब उठे औरत या मर्द तो अपने जिस्म पे कोई सिक्रीशन देखे, कोई ख्वाहिश के बाद हुई, तो उस सूरत में भी गुस्ल की हाजत होती है। अब हमारे यहाँ ये मसाइल नहीं पता होते, बताए भी नहीं जाते, जिक्र नहीं किया जाता, और आप देखिए कि बाज़ चीज़ें हलाल और हराम के दर्जे पे पहुँच जाती हैं और बच्चों और बच्चियों को पता ही नहीं होता। तो ऐसे मामला जिसका हमारे अमल से ताल्लुक़ है, ये ज़रूर पता होने चाहिए। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा बातें करें और गंदी चीज़ें देखें दिखाएं, वल्गर टॉकिंग हो उस पर कोई ना रोके, गंदे सीन चलें फिल्मों के उस पर कोई ना रोके टोके, लेकिन जो हुक्म के मसले हैं, और इसमें कोई ही की भी ज़रूरत नहीं होती। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आप देखिए कि अल्लाह के नबी के लिए कितने हमारे दिल में नेक जज्बात होने चाहिए, कि ये सारे बातें जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर में इसे पढ़ चुके होंगे कि यह हदीस थी अल्लाह के नबी की, तो जिसमें से ये बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। तो अगर कोई भी ऐसा देखे कि उसके जिस्म पे एक अनयूजल किस्म का वेटनेस हो, तो फिर वो उसके ऊपर गुसल करेगा, उस पर गुसल होगा। इसके बाद अगली चीज़ हमने सीखी वो गुसल का तरीका, यानी गुस्ल हैज़ या जुनाबत का गुस्ल कैसे होता है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, इसके अंदर किस तरीके से यानी मामला होगा, इसको हम दोनों को थोड़ा सा देखेंगे, ताकि इसका एक तो ये कि अगला चैप्टर इसमें आ रहा है, जिसमें से हम वो वहीं जाके बात करेंगे जहाँ होगी। इस हिस्से में से जो पता बात चली वो नोट करते जाइए, ताकि तरतीब भी रहे आपके सामने मौजूद। जी, यहाँ से जो हमने सीखी वो क्या है, कि अगर कोई औरत जनाबत के गुस्ल के वक्त पूरे बाल ना खोले और सिर्फ जड़ों को गीला कर ले, सर पे 3 लप्पे पानी की डाली जाएं और जड़ें गीली हो जाएं और बाकी जिस्म पे पानी डाल ले, तो गुस्ल हो जाता है। इसके बरक्स पीरियड्स में पूरे बालों को धोना लाजमी होता है, और उसकी वजह बड़ी साफ समझ आती है कि पीरियड्स तो महीने में एक ही दफ़ा वो गुस्ल होगा ना, और वो काफ़ी दिन की गंदगी होती है और उसकी एक ख़ास स्मेल भी होती है और उसका असर भी होता है। लेकिन जुनाबत का मसला वक्ती है, किसी को अचानक पेश आ सकता है, किसी को एक से ज़्यादा दफ़ा पेश आ सकता है। तो उस सूरत में अगर कोई ऐसी मजबूरी है, सर्दी है या कहीं जाना है या कोई मामला है, तो सिर्फ बालों की जड़ें गीली करके जिस्म पे अगर पानी फेर लिया जाए, तो इंशाल्लाह वो उससे भी पाकी हो जाती है। फिर और बाज़ इलाकों में आप देखते हैं कि बाल मीढ़ियाँ बनी होती हैं, बहुत सारे जिनके बाल घुंघरियाले होते हैं, अफ्रीकी लोगों को आप देखते हैं कि बहुत उनके घुंघरियाले से बाल होते हैं। अब वो छुट्टियां शायद एक महीने में एक दफ़ा करते हैं, तो वो तो हर वक्त नहीं खोल सकते, तो उसमें बस बालों की जड़ों को गीला कर लिया जाए तो काफ़ी होती है। फिर हर जगह ऐसे फ्रेश इंतज़ाम भी नहीं कि गर्म और ठंडे पानी हो और कसरीर हो। अब देखिए कि अल्लाह का दीन कितना खूबसूरत दीन है, कि जो किसी सहरा में रहने वाले को भी उतनी ही गाइडेंस देता है जितनी किसी शहरी इलाके में रहने वाले को। तो दीन का कोई भी मसला सुनते वक्त ये जहन में ज़रूर रखा करें कि ज़रूरी नहीं कि इसमें मेरे ही मुतल्लिक बात हुई हो, ये दुनिया के किसी और खित्ते में रहने वाले इंसान का मसला भी होगा। आम हालात में सब करें, लेकिन कोई अनयूजल कंडीशन है तो उसमें फिर इंसान को इसकी रुख्सत जो है वो मिल जाती है। अगली चीज़ जो हमें इससे पता चली वो क्या है, कि अगर जुनाबत की हालत में किसी वजह से कोई गुसल ना कर सके, तो उस शख्स से मुसाफा करना या उससे मिलना जायज़ है। देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गुस्सल के बाद अगर वज़ू में देर हो रही हो तो अगली चीज़ पता चलती है कि वज़ू कर लेना चाहिए। और इंशाल्लाह जब हम किताबु सौम पढ़ेंगे तो उसमें आप ये भी मसला नोट सुनेंगे कि जब कभी जुनाबत की हालत हो और सहरी का वक्त है, अब इतना वक्त नहीं कि आप सहरी करें या गुस्ल करें, तो फिर वज़ू करके खाना खाया जा सकता है और उसके बाद फिर वज़ू करके गुस्ल करके नमाज़ पढ़ेगी। या एक छोटा सा बस छोटा हुक्म समझ जाएंगे तो बात सारी वाजह हो जाएगी कि गुस्ल से, गुस्ल की जो आखिरी हद है जुनाबत से या पीरियड से, वो अगली नमाज का वक्त है। उस नमाज के आने से पहले पहले गुस्ल करना वाजिब फ़र्ज़ है, क्योंकि नमाज तो नहीं छोड़ सकते। फिर अगली चीज़ हमें इससे पता चलती है, और वो क्या है कि इंसान गुस्ल की हालत में वज़ू करके सो सकता है। यानी बाज़ दफ़ा नहीं दिल चाहता फ़ौरन गुस्ल करने को, या हालात नहीं है, या कोई और बात है, या दोबारा भी ज़रूरत पेश आ सकती है, तो उस सूरत में फिर गुस्ल के बग़ैर वज़ू करके भी सोया जा सकता है। अगली चीज़ जो हमने इसमें सीखी वो क्या है कि एक शौहर अपनी बीवी से एक ही गुस्ल में कई बार भी ताल्लुक़ कायम कर सकता है। यानी अगर एक ताल्लुक़ कायम हुआ, उसके बाद दोबारा कुछ अरसे के बाद दिल ख्वाहिश में आती है, तो दोनों के बीच में गुस्ल करना लाजिम नहीं है। आखिर में एक ही दफ़ा अगली नमाज से पहले जो है वो गुस्ल किया जा सकता है। अगली चीज़ इससे हमने सीखी, और वो क्या है कि पीरियड्स में एक औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हराम है, मना है। लेकिन इसके अलावा औरत के साथ ज़ाहरी फ़ायदा उठाना या मिलना जुलना, बात करना, या कोई और ऐसी बात जिसमें यानी ये ताल्लुक़ की हद ना आए, तो ये भी जायज़ है। हाँ, अगली बात इसमें हमने देखी कि अगर कोई गलती से या किसी मजबूरी से या शैतानी वसवसे के तहत बीवी से पीरियड्स में ताल्लुक़ कायम करता है, तो फिर उसको निसफ दीनार खैरात करनी उसका कफ़ारा है। दीनार सोने का सिक्का होता है, कुछ इसकी ख़ास फिगर होती है, कुछ माशे होते हैं, ये पता चल सकता है कि एक दीनार कितना है। तो अगर पीरियड्स के दौरान करेगा, और इसमें भी दो बातें हैं कि अगर जोश है यानी पीरियड्स के दिन ज़्यादा थे और उस वक़्त किया तो 1 दीनार, और अगर आखिरी दिन थे कि जब पीरियड्स ख़त्म हो चुके थे लेकिन अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए थे, तो फिर नस दीनार दिया जाएगा। और तौबा भी करनी चाहिए अपने इस फेल पे, यानी इसको तकरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिर इंसान को बड़े गुनाहों की तरफ ले जाती हैं। अगली चीज़ इसमें हमने सीखी वो क्या है कि अगर किसी मर्द को या इवन औरत दोनों में से किसी को भी सिर्फ ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज होता है, यानी जो ख्वाहिश का जो डिस्चार्ज होता है, अगर वो हो जाए तो उस पर गुस्ल की ज़रूरत नहीं होती। दो तरह के डिस्चार्ज होते हैं, एक वो होता है जो ताल्लुक़ कायम करने से पहले इश्तहा के लिए है, ट्रांसपेरेंसी है, उसके सूरत में आप सिर्फ वज़ू करेंगे, जिस्म को धो लिया जाएगा। लेकिन दूसरा जो है वो उसके बाद का, एक को मज़ी कहते हैं, एक को मनी कहते हैं। तो मज़ी की सूरत में सिर्फ गुसल वाजिब है, सिर्फ वज़ू वाजिब है, लेकिन मनी होगी तो फिर उस सूरत में गुसल की भी ज़रूरत होगी। अगली चीज़ जो हमने इसमें सीखी वो क्या है कि जिस तरह औरत के पीरियड्स के कपड़े को धोया या खुरचा जा सकता है, इसी तरह मर्द के जिस्म से अगर कोई ऐसी रतूबत निकलती है और धोने का अहतमाम नहीं हो सकता, तो फिर उसको भी खाली खुरचा जा सकता है, और धोया जाए तो वो ऑफ कोर्स सबसे बेहतर होता है। फिर अगली चीज़ हमने इसमें सीखी, और वो क्या है कि बाज़ दफ़ा लोगों को एक ऐसे डिस्चार्ज की एक बीमारी होती है कि जैसे पेशाब से पहले या बाद कोई थिकनेस या कोई ऐसी रतूबत निकलती है, तो इस पे गुस्ल वाजिब नहीं है, क्योंकि ये तो एक बीमारी है, और सिर्फ धो लेना और फिर बाद में वज़ू कर लेना वही काफ़ी है। तीनों का फ़र्क क्या है? मज़ी हो यानी शहवत से पहले पानी निकले तो सिर्फ वज़ू किया जाना काफ़ी है, मनी शहवत के बाद डिस्चार्ज हो तो फिर गुस्ल भी वाजिब होता है, और तीसरा क्या है, इसको वदी कहते हैं, वदी या कहते हैं बहने को, उर्दू में जो वादी का लफ्ज़ है वो भी इसी से है, तो इस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं है। फिर अगली चीज़ है औरतों के डिस्चार्ज के बारे में, जिसको हमारे यहाँ लिकोरिया कहते हैं, उर्दू में इसको सिलानुर रहम कहते हैं, रहम का एक पानी होता है, येलो डिस्चार्ज भी इसको लोग बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? तो इसके बारे में ये है कि ऑफ कोर्स इंसान अपने आप को साफ़ सुथरा तो रखेगा, कोई ऐसा इंतज़ाम तो करेगा कि जिस्म पे और कपड़ों पे ना लगे, लेकिन इससे गुस्ल नहीं आता। अगर ऐसा कोई मामला हो तो बस नमाज के वक्त में जैसे आम नमाज पढ़ी जाती है वज़ू करके नमाज पढ़ी जा सकती है। फिर इसके बाद अगली चीज़ हमने सीखी कि पीरियड्स में बीवी के साथ खाना पीना सोना बैठना सब काम जायज़ हैं, क्योंकि बाज़ लोग इसमें इतनी इंतहा बरतते थे कि औरत को बिल्कुल अलग कर देते थे, तो इस्लाम ने उस चीज़ से रोका कि नहीं खा सकते हो। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ खाते भी थे, सोते भी थे, बाज़ दफ़ा उनसे प्यार मोहब्बत की बात भी होती थी, और हज़रत आयशा का जूठा अल्लाह के नबी खाते थे, और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। और और इससे ये भी पता चलता है कि इन दिनों में शौहर बीवी साथ सो भी सकते हैं, यानी कि औरत बिल्कुल नजस नहीं हो जाती कि उसका जिस्म ही नापाक हो गया या उसके हाथ ही नापाक हो गए। फिर एक और चीज़ पता चलती है कि अगर कोई पीरियड्स की कैफियत में है तो ज़रूरत के तहत मस्जिद का जो प्रेइंग रूम है वहाँ से कुछ चीज़ लेके आनी है तो जा सकते हैं लेने के लिए, लेकिन वहाँ ठहर नहीं सकते। और ये सब दलाइल आप इंशाल्लाह बुक में पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे। अगली चीज़ जो हमें इससे पता चलती है कि पीरियड्स, अगर कोई औरत पीरियड से है तो उसका शौहर या कोई भी उसका बेटा या व्हाटएवर जो भी है उसकी गोद में सर रख के या उसको टेक लगा के कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। हमारे यहाँ बहुत ही अफरात और तफरीत है, और जितनी जहालत ज़्यादा होती है उतनी ज़िंदगी मुश्किल होती है। खुद साख्ता पाबंदियाँ और जकड़बंदियों में लोग जड़े रहते हैं, जिसकी वजह से फिर बात अपने बाज़ दफ़ा बहुत बड़े बड़े अहम मसलों को समझ नहीं सकते। फिर अगली चीज़ हमने इसमें देखी कि पीरियड्स में औरत के कुरान पढ़ने की क्या कैफियत होगी। तो इसमें जो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये एक इख्तलाफी मौजू भी आता है, लेकिन कुरान पाक पढ़ने में कबाहत नहीं है। बस कहते हैं कि ना पढ़े तो बेहतर है, लेकिन जो सही मसला है इंशाल्लाह कि औरत पीरियड्स की हालत में तो कुरान पढ़ना चाहे ज़ुबानी उसको जो याद है वो पढ़ सकती है, लेकिन जुनाबत की हालत एक ऐसी है, यानी दोनों का फ़र्क हम देख चुके, इस सूरत में कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। सिर्फ़ एक ही माने सलात और माने यानी कुरान के पढ़ने के अंदर एक ही रुकावट है, और वो क्या है? जुनाबत। पीरियड्स के अंदर औरत पढ़ सकती है, सिर्फ छूने पे जो मसला है वो जहाँ बात आएगी तो वहाँ हम तफसील से करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगली चीज़ जो हमने देखी वो क्या है कि अगर आपको कोई रेस्ट रूम में जब आप हों और आपको कोई सलाम करे तो फौरन जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि फारिग होने के बाद जब बाहर आए तो फिर उसका जवाब दिया जाए। अल्लाह के नबी के साथ ऐसा हुआ तो आपने वज़ू करने के बाद फिर उसको वालेकुम अस्सलाम कहा, और आपने कहा कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तहारत के बग़ैर सलाम का जवाब दूँ। तो इंसान को इन मैनर्स को भी अपने सामने रखना चाहिए। फिर उसके बाद अगली चीज़ वो क्या है कि जब इंसान, हमने जो अगली चीज़ इसमें सीखी कि ऐसी नापाकी की हालत में तस्बीह करना, यानी सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना, और दूसरे जिक्र अस्कार जिसमें सुबह शाम की दुआएं या कोई और वज़ाइफ हैं या मतलब जो भी सही मसनून है तो ये किए जा सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला हज के दौरान ही पीरियड्स में आ गई, बहुत ही परेशान हुई, तो अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि बैतुल्ला के तवाफ़ के अलावा बाकी हर वो काम करो जो हाजी करते हैं। फिर अगली चीज़ इसमें हमने ये सीखी कि औरत पीरियड्स में भी हो फिर भी ईद के रोज़ ईदगाह जाएगी, जहाँ सबके लिए इज्तमाही नमाज का अहतमाम होगा, और तकबीरों के साथ तकबीरें कहेगी और दुआ के साथ दुआ करेगी, लेकिन जब नमाज का वक्त आएगा तो पीछे चली जाएगी सफ़ों में, यानी नमाज नहीं पढ़ेगी बाकी सब कुछ करेगी। अगली चीज़ इस चैप्टर में हमने सीखी इस्तेहाज़ा की। इस्तेहाज़ा कहते हैं पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग का होना, और आज के दौर में ये मरض़ बहुत आम है, यानी बाज़ दफ़ा जब बाहर इतना हिजान होता है और इतना ज़्यादा लोगों के जहनों पे लव सेक्स और ऐसी चीज़ों को कर दिया जाता है कि जिस्म के अंदर तब्दीलियां इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि पीरियड्स के ब्लड के अलावा भी आम दिनों में ब्लीडिंग होती रहती है, और बाज़ दफ़ा उम्र के फ़र्क से बड़ी उम्र में जाते हुए या जिस्मानी कमज़ोरियों की वजह से ऐसा होता है कि जो पीरियड्स के दिन है उसके बाद भी ब्लीडिंग रहे या उससे पहले ही शुरू हो जाए, इसको इस्तेहाज़ा कहते हैं। इसका हुक्म क्या है कि ऐसी औरत जो है वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ेगी, एक दफ़ा पाकी का गुसल कर लेगी और उसके बाद जूँ ही वो पाक होगी, उसके बाद इवन ब्लीडिंग होती भी रहे तो वो नमाज, दीन, हर चीज़, जो हर चीज़ नमाज़ की पाबंदी थी, और ऑफ़ कोर्स उसमें ताल्लुक़ की बात भी आती है, जब नमाज़ पढ़ ली तो रोज़ा भी रखना होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर ताल्लुक़ भी कायम हो सकता है, तो ये चीज़ इस तकाज़े में आती है। बेहतर है कि हर नमाज़ से पहले वज़ू अलग किया जाए, और बस एक खातून थी वो हर नमाज से पहले गुसल भी करती थी और सहाबिया थी, उन्होंने अल्लाह के नबी से मसला भी पूछा, तो लेकिन यह है कि ये इसकी वजह से अपनी नमाज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। इसका हुक्म यही है कि आम दिनों में उस बीमारी से पहले जो रूटीन हो, हर खातून की, हर औरत की, लड़की की अपनी रूटीन होती है, वो दिन काउंट की जाए। किसी को अगर उससे 5 दिन पहले रूटीन 5 दिन की थी, किसी की 6 की थी, 7 की, बस वही दिन रखें। यहाँ एक हल्का सा फ़र्क पता करने के लिए कि कैसे पता चले कि ये पीरियड्स का ब्लड है या इस्तेखाज़ा है, तो 2 अलामतें होती हैं पीरियड्स के ब्लड की। एक है बदबू, बैड स्मेल होती है उसकी, एक टिपिकल सी स्मेल आती है, और दूसरा ये कि वो काले रंग का होता है, ब्लैकिश होता है, यानी उसमें गंदगी का एहसास होता है। इसके बरक्स जो इस्तहाज़ा का खून है, एक तो वो खिला हुआ सुरख होता है, बाज़ लोग इसको कहते हैं नहीं बहुत फ्रेश ब्लड आ रहा है, ये फ्रेश ब्लड ही इस बात की अलामत है कि ये गंदगी का खून नहीं। वो ऐसे ही जैसे आपके हाथ में कट लग जाता है तो ब्लड निकलता है ना, इसी तरह जिस्म के अंदर कुछ कट्स लगे होते हैं तो उससे वो ब्लड आता है, वो नापाक नहीं रहता। और दूसरी ये कि उसमें बदबू नहीं होती। तो इस सूरत में नमाजें ज़ाया नहीं करनी, अगर कोई पिछली ज़िंदगी में कर चुकी हैं और आपको याद है तो उसको कज़ा अदा करनी होगी। लेकिन ये जो है ऐसा हुक्म है कि जिसको बहुत ज़्यादा सही तरीके से हमें मालूम होना चाहिए। फिर अगली चीज़ हमने इससे सीखी और वो क्या है कि पीरियड्स के दौरान ना तो औरत नमाज़ पढ़ेगी और ना रोज़ा रखेगी, लेकिन बाद में नमाज की कज़ा नहीं होगी लेकिन रोज़े की कज़ा होगी। अगली चीज़ हमने सीखी नफास की, बच्चे की पैदाइश के बाद का जो दिन है, इसके थोड़े से मसाइल को भी देखना होगा। पहली बात यह है कि इसकी हद 40 दिन है, 40 डेज़ हद है, शर्त नहीं है, और ये मसला हमारे कल्चर में तो बहुत थोड़े लोगों को पता है। बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिन तक औरतें नमाज रोज़े से दूर रहती हैं और उसको एक ख़ास नाम दे के बिल्कुल ऐसा अलग कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हद 40 डेज़ है, 40 दिन के बाद भी ब्लीडिंग ख़त्म ना हो तो औरत शावर लेके नमाज रोज़ा और अपना बाकी सारे काम जो है वो पूरे करेगी। किसी के 40 दिन से पहले ख़त्म हो गया, 10 दिन में हो गया, कोई हर जिस दिन पाक हुई पीरियड्स वाली कैफियत होगी, पाक हुई है गुसल करेगी, नमाजें पढ़ेगी, हर चीज़ अलाउड है जो उसके बीच में मना थी, दोबारा फिर शुरू होगी। बाज़ औरतों को बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद ब्लीडिंग होती है, फिर बीच में कुछ दिन नहीं होती, 10-15 दिन खुश गुजर जाते हैं, फिर दोबारा जैसे अगले महीने के ब्लड पीरियड्स का वक्त है या वट एवर दोबारा होती है तो वो दोबारा छोड़ेगी, लेकिन सिर्फ इस नाम से कि अभी मेरे 40 डेज़ चल रहे हैं, ब्लड भी कुछ नहीं और फिर भी खुश किए, फिर भी नमाज ना पढ़े, तो वो नमाजें जो है उसके नाम पे यानी कर्ज होंगी। किसी ने इमाम शाफी से पूछा था कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं उनको ब्लड होता ही नहीं, और आज भी ऐसा होता है बाज़ लोगों के बच्चों की बर्थ ही इस तरह की होती है कि ब्लीडिंग होती नहीं बाद में, बाज़ दफ़ा ऑपरेट करने में वो सारी रतूबतें और गंदगियाँ निकाल दी जाती हैं जो बाद में थोड़ी थोड़ी करके निकलनी होती हैं, तो उस सूरत में भी कहा कि फिर औरत नमाज पढ़ेगी, यानी ताल्लुक़ इसका उसी ब्लड के साथ है। फिर उसके बाद अगर पीरियड्स की तरह नमाज अगर छुटी नफास में तो उसकी भी कज़ा अदा नहीं होगी, लेकिन अगर रोज़े छुटेंगे तो उसकी कज़ा जो है वो अदा की जाएगी। तो ये थी इस चैप्टर में से अमल की बातें। इसमें से कोई सवाल अगर जहन में आए तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, सिर्फ यही मसले पूछिएगा जो जिक्र हुआ, ऑनलाइन से भी लिख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। जी आप जी वजू कर ले, हाँ जी, क्योंकि पानी निकलता है जिस्म से, वैसे भी एक गंदगी का एहसास भी होता होगा ना, ये उसका जो लिक्विड है वो तो ऑफ कोर्स जिस्म से जब गंदी जगह से निकल रही है तो वो चीज़ तो नापाक होगी ना, लेकिन औरत नापाक नहीं होती। मेन बेहतर अगर कुछ भी लगा रहता है तो कोई, क्योंकि अगर बिलफर्ज आपको अंडर गारमेंट्स भी पहनते हैं तो उसको भी तो लगेगा ना, तो वो कपड़े को लग गया तो इंशाल्लाह ताला मतलब जो जितना सफाई पसंद होगा उतना उसको अवॉइड करेगा। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अलग से कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली जाए, या नमाज के लिए कोई अलग आज़ार, कोई शलवार रख ली जाए, यानी जो जितना करे, लेकिन अगर किसी वजह से आप ऐसे लगा हुए तो आप नमाज नहीं छोड़ेंगे कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, कि ये मामला है। ठीक है, और कोई बात? अच्छा, ये इनका सवाल है कि पीरियड्स के दौरान अगर हम सुबह शाम की दुआएं या कोई अस्कार पढ़, बस पढ़ ले, ऐसे ही पढ़ ले, ठीक है, गुसल वजू की शर्त नहीं है। जी आप, अभी पता चलती है, अगर होगी तो अल्लाह के नबी ने ज़रूर सिखाई होगी। हमारा ये ईमान है कि अल्लाह के नबी कोई हुक्म सुनाने के अंदर या बताने के अंदर हमें ऐसे नहीं थे कि वो कोई बात छुपा लेते हैं। ये अलग बात है कि आज हमें चूंकि हर चीज़ में मर्च मिसाले नमक मिर्च डालने की आदत होती है ना, तो हमारे कल्चर में है कि हम दीन सीधा सादा कबूल ही नहीं कर सकते। मैं तो यही सोचती हूँ, फीका खाना नहीं खाते ना, फ्रूट के ऊपर भी नमक मिर्च डाल के खाते हैं, तो दीन के मसलों में भी नमक मिर्च डाला हुआ है। जी, और कोई सवाल? जी आप रेहाना। बर्थ पिल्स का जो बर्थ कंट्रोल,
तो
ओके।
उसके बाद जो है वो तकरीबन वो अंदर कुछ हेल्प पाती है नहीं,
जी
उसके
जी
लिए बात करते हैं। उसके लिए तकरीबन 6 माह जो है वो बाद में ब्लीडिंग होती रहती है,
जी,
तो क्या वो इस्तेहाज़ा में आएगा?
ऑफ कोर्स इस्तेहाज़ा ही आएगा, और उसका हुक्म मैं देखती हूँ कि इस बुक में हमें आगे आएगा नहीं तो। लेकिन इनका आपका सवाल मैं दोहरा देती हूँ कि बस दफ़ा कुछ ऐसी प्रिकॉशंस ली जाती हैं कि जिसकी वजह से पीरियड साइकिल चेंज हो जाता है, तो उसमें भी फिर इस्तेहाज़ा ही होगा, क्योंकि 6 माह तक अगर ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ होती जा रही है तो वो फिर नमाज तो नहीं छूटेगी। और इसका बेस्ट तरीका है कि ऐसी चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए जो एक इतना फितूर पैदा कर दें कि जिससे औरत का सारा सिस्टम बदल जाए। दूसरी ये कि लेडी डॉक्टर्स जो इस चीज़ को ऑपरेट करें उनसे भी पूछ लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को ये बात पता होती है कि पीरियड्स का ब्लड डिफरेंट ड्रग्स से आता है और जो ब्लीडिंग होती है वो कहीं और जगह से होती है, तो डॉक्टर से पूछा जा सकता है कि क्या ये मेरा पीरियड का ब्लड है या ब्लीडिंग का। ठीक है, और कोई सवाल? जी जी ज़रूर पूछिए। अज़ार शलवार को कहते हैं, ट्राउज़र शलवार यानी नीचे के कपड़े को कहते हैं। कितने लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ था पहले जो मैंने अभी बताया है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जिन्होंने नहीं पढ़ा पूछ सकती हूँ क्यों नहीं मौका मिला आपको? देखें कि आप लोग अगर आधा फ़ायदा लेंगे तो आधा ले लें, पूरा लेंगे तो। आप जिन्होंने पढ़ा हुआ था, आपको मेरे इस पढ़ाने के स्टाइल से फ़ायदा हुआ? जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था उनको फ़ायदा हुआ? पूरा हुआ क्या आधा? सुनते वक्त जहन में कोई कन्फ्यूजन आ रही थी कि इसका कोई मज़ीद डिटेल भी बताएं? आनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने कोई दलील तो दी नहीं अपनी बात की, क्योंकि दलाइल आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसलिए पहले से पढ़ के आएंगे तो आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। जी आप प्लीज़। जी बिल्कुल, ये इनका सवाल पीरियड से मुतल्लिक है। बेसिकली मैंने जब ये कोर्स डिज़ाइन किया था तो मेरा बड़ा ही दिल था कि आपको किताबु तहारा भी पढ़ाऊं, लेकिन चूंकि इसमें ये मौजू आ रहा था तो मैंने नहीं उसको लिया और टाइम भी नहीं था। लेकिन आपका सवाल चूंकि औरतों के मसाइल से, तो इनका सवाल कुछ इसी किस्म का है कि पीरियड्स जो हैं वो उससे 2 दिन के बाद किसी अगर स्पॉटिंग हो जाए या कोई स्टेन लग जाए तो क्या हुक्म है? तो इसको इंशाल्लाह हम एक इस मौजू पे पूरी कोशिश करूँगी कि बाद में भी हम एक मौका ऐसा रख लें, लेकिन ऐसी सूरत में जो है वो फिर औरत देखेगी। पीरियड्स का ब्लड जो होता है ना उसके लिए यानी एक ख़ास वक्त होता है। हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट बन चुका है ना कि इसके कोई ख़ास 6 दिन है, और बाज़ लोगों को 6 दिन से पहले ब्लीडिंग सब ख़त्म हो चुका होता है बच्चियों को, फिर भी वो कहते हैं नहीं जी मेरे दिन पूरे नहीं हुए। ऐसा नहीं है, एक एक दिन का भी हो सकता है पीरियड और 15 दिन का भी हो सकता है। इसकी ना कोई कम से कम की हद है ना ज़्यादा से ज़्यादा की हद है, ठीक है। हाँ, करें क्या, ये इस मसले को इस्तखाज़ा और पीरियड्स को कैसे देखें? पीरियड्स हुए, हो गए, होते गए, उसके बाद एक लम्हे के लिए या एक वक्त के लिए ट्रांसपेरेंसी आ जाए। ट्रांसपेरेंसी कि आप किसी चीज़ से भी फील कर सकते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, दूधिया नहीं, जो वाइट वो नहीं, कुछ लम्हे के लिए अगर उसके अंदर आपको बिल्कुल जैसे क्रिस्टल क्लियर फीलिंग आ जाए, दैट्स इट, ये अलामत है आपके पीरियड्स के ख़त्म होने की। गुसल कीजिए, गुसल के बाद अगर आपको इवन ब्लड आ जाए, इवन स्टेन आ जाए, इवन उसके बाद वाइट डिस्चार्ज हो, तो उसको इग्नोर कर दें, ठीक है। बात वाजे हो गई, एक दफ़ा ट्रांसपेरेंसी हो जाए। सहाबियात जो हैं वो रुई को रख रख के देखा करती थी और वो इंतज़ार करती थी कि कब हम पीरियड से फारिग हों और हम नमाज़ शुरू करें। यहाँ एक ये भी बड़ा अहम मसला है कि बाज़ लोग नमाज़ों से चूँकि जान छुट्टी होती है तो फिर शावर ही नहीं लेते 2-2 दिन, कि जरूरत नहीं। अच्छा पढ़ ली तो नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर ऐसा किया तो एक तो गुना, कबीरा गुना, और दूसरा ये कि वो नमाजें जो छूटी उसकी कज़ा करनी होगी। तीसरी वजह है, फिर इसमें ये भी आती है कि अगर ऐसी कैफियत में इंसान, यानी जैसे रमज़ान में ये मसले बड़े उठते हैं और अभी उठेंगे जब हम रमज़ान की बुक शुरू करेंगे, लेकिन उस पर इंशाल्लाह वो उस बुक में ही आपको रमज़ान से रेलेवेंट इसके मसले वहाँ, बल्कि इस पर थोड़ी हम बात कर लेंगे अल्लाह ने अगर चाहा तो। लेकिन ये है कि पीरियड, फिर एक और चीज़ पीरियड्स की जो बिदात कहूँगी मैं, तो ये भी पीरियड्स की बिदात ही हैं। और वो क्या है कि जब औरत गुसल करे तो पता नहीं कितने कलमे पढ़वाते हैं। हाँ, 6 कलमे के? 3? हमें तो ऐसी कोई चीज़ सुन्नत से नहीं मिलती है। फिर बाज़ दफ़ा पीरियड्स के साथ बाज़ लोगों ने कुछ और भी कहानियाँ घड़ी होती हैं, इस पे करेंगे बात इंशाल्लाह जी, क्योंकि अभी जी इसी बुक में पढ़ा था तो आ जाएगा मसला। 1 मिनट। हाँ जी, वो अगर है तो इसमें आएगा। मैं इसीलिए इसको मौजू को बहुत आगे नहीं खींच रही कि इसके मसाइल आगे साथ साथ आते जा रहे हैं तो हम वहाँ देखते रहेंगे जी। देखिए डिपेंड करता है ना, हालात पे डिपेंड करता है जी। आप पीछे से खड़ी हैं कुछ? ठीक है, चले इतने काफ़ी है अभी। आज काफ़ी मसले आपको मालूम हो गए ना, और आज आप सही लग रहा होगा आपको हम कोई इस्लामी कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि मसले आ रहे हैं ना। हमारे यहाँ दीन का ताल्लुक ही मसलों से रह गया हुआ है। क्या मसला सुना है, क्या मसला किया है, हैं? रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी तो बस ऐसे ही होती है, हैं? तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अमल करें। ये कुछ काफ़ी सवाल आते हैं ऑनलाइन के भी, शुड वी रीड दुआ व्हेन वी टेक शावर फॉर पीरियड्स? नहीं, पीरियड्स देखिए ये सवाल सुन ले, आप लोगों ने भी किया था। और ये कि अभी हमने पिछले ही मौजू में देख लिया कि जब रेस्ट रूम में आप जाएंगे, शावर में जाएंगे, टॉयलेट में जाएंगे, तो कोई बात नहीं करनी, सलाम का जवाब नहीं देना, तो कहाँ उस वक्त आप दुआएं पढ़ेंगे? क्या नेकेडली कोई दुआ पढ़ी जा सकती है? कतन नहीं पढ़ी जा सकती। ऐसी कोई दुआ नहीं है कि जो आप गुसल के लिए पढ़ें। वही दुआ जो अंदर जाते हुए बिस्मिल्लाह ही अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसि वल खबाइस, और बाहर आते हुए गुफराना का, इसके अलावा कोई बिस्मिल्लाह या कोई कलमा पढ़ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी। आप बोलिए, ये दूसरा कौन है? ये जो आप लोग कहते हैं ना किसी ने ये कहा था, वो कौन किसी ने कहा था? आप मेरे नाम से भी ना कहे, आप वल्ला ही आज घर जाके ये ना कहे कि हमारी उस्ताद ने कहा, ये मेरी कोई बात नहीं थी। जितने बातें ये सारी लिखी हुई हैं, और दलील दिखा दें तो पढ़ लें। ठीक है, हमारा दीन तो दलील का दीन है ना। टुडे रफ़ा हाजत में वी लर्न दैट वी शुड वॉश विद लेफ्ट हैंड, बेबी को राइट हैंड से वॉश कर सकते हैं? देखिए कितना अच्छा मसला इन्होंने पूछा ना, कि क्या फिर जब खुद भी लेफ्ट हैंड से इस्तेमाल करना है क्लीनिंग के लिए, तो क्या बच्चे को भी राइट से करें? आप खुद ही इसका जवाब दें। इस्तफ्त कल्बक वलव अफतूक, नहीं करना चाहिए। वो बच्चा भी देख रहा है, वो खामोश पैगाम है कि जब माँ सीधे हाथ से मुझे साफ कर रही है तो मैं भी अपना कर सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि पीरियड के बाद कितने दिन बाद गुसल करना चाहिए? दिन नहीं, मिनट्स के बाद पूछें। जो ही पीरियड्स ख़त्म हुए उससे अगली नमाज आप पे फ़र्ज हो जाती है, डिले नहीं करेंगे उसके बाद। ठीक है, ये कह रही हैं कि अगर जनाबत हो रमज़ान में तो रोज़ा रख कर कितनी देर तक नहा सकते हैं? फजर से पहले, फजर की नमाज मस्ट है आपको पढ़नी। फजर की नमाज मिस कर देंगे और रोज़ा रख लेंगे तो फिर रोज़ा नहीं होगा। ठीक है, वी वॉश बेबी, अच्छा ये कह रही हैं कि वी वॉश बेबीज़ विद राइट हैंड बिकॉज वी कैरी देम विद लेफ्ट हैंड, इज़ इट ओके? तो अपोजिट कर लेना, बेबी को राइट हैंड से कैरी करें और लेफ्ट से धोएं। ठीक है, धोएं लेफ्ट से। आप अगर जनाबत हो रमज़ान जी, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अपने आप को, अपनी नमाज़ों को देखने की और तहारत के और इन सारी चीज़ों को देखें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।